नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Nautry के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग अप्रोच। मार्क रिचर्ड्स और नील फोर्ड की सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर आधारित व्यावहारिक गैर कथा पुस्तक है। इसका उद्देश्य किसी एक तकनीक, प्रोग्रामिंग भाषा या फैशनेबल आर्किटेक्चर को अंतिम समाधान बताना नहीं है। इसके बजाय यह समझाती है कि आर्किटेक्ट जटिल तकनीकी और व्यावसायिक परिस्थितियों में निर्णय कैसे लेते हैं। पुस्तक आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट डिजाइन, आर्किटेक्चर स्टाइल्स, निर्णय प्रक्रिया, जोखिम विश्लेषण, डायग्रामिंग और टीम के साथ काम करने जैसे विषयों को एक साथ रखती है। इसका केंद्रीय विचार है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हर चुनाव एक ट्रेड ऑफ है, इसलिए सही उत्तर संदर्भ पर निर्भर करता है, जैसे टीम की क्षमता, लागत, समय सीमा, डोमेन, मौजूदा सिस्टम और अपेक्षित गुणवत्ता। यह पुस्तक विशेष रूप से डेवलपर्स को आर्किटेक्चरल सोच विकसित करने में मदद करती है। साथ ही यह आर्किटेक्ट की भूमिका को केवल तकनीकी डिजाइनर नहीं, बल्कि परिवर्तन, संवाद और निर्णयों के प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, हर आर्किटेक्चरल निर्णय में ट्रेड ऑफ को स्पष्ट करना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हर चीज एक ट्रेड ऑफ है। माइक्रोसर्विसेज, लेयर्ड आर्किटेक्चर, इवेंट ड्रिवन डिजाइन या मॉड्यूलर मोनोलिथ में से कोई भी शैली हर परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं होती। उदाहरण के लिए, माइक्रोसर्विसेज स्वतंत्र डिप्लॉयमेंट और अलग अलग स्केलिंग की सुविधा दे सकती है, लेकिन इसके साथ नेटवर्क संचार, ऑब्जर्वेबिलिटी, डेटा संगति और संचालन की जटिलता बढ़ती है। दूसरी तरफ, एक मोनोलिथ शुरुआती विकास को सरल बना सकता है, पर खराब मॉड्यूलरिटी होने पर बदलाव कठिन होते जाते हैं। लेखकों का आग्रह है कि आर्किटेक्ट लोकप्रिय उत्तर देने के बजाय उस समस्या की वास्तविक बाधाओं को सामने लाए, किन गुणवत्ता गुणों को प्राथमिकता मिली है, कौन से जोखिम स्वीकार्य है, टीम किस तकनीकी जटिलता को संभाल सकती है और भविष्य में किस प्रकार का बदलाव संभावित है, ये प्रश्न निर्णय का आधार बनते हैं। यह दृष्टि आर्किटेक्चर को व्यक्तिगत पसंद या तकनीकी प्रचार से अलग करती है। निर्णय का मूल्य इस बात से तय होता है कि उसने संदर्भ में आवश्यक लाभ दिए और उसके नुकसान कितनी समझदारी से स्वीकार किए गए। इसीलिए पुस्तक निर्णयों के कारणों को दर्ज करने और समय के साथ उनकी समीक्षा करने को भी जरूरी मानती है। दूसरा, आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स से जरूरतों को मापने योग्य बनाना। पुस्तक कार्यात्मक आवश्यकताओं से आगे बढ़कर आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देती है। ये वे गुण हैं जो बताते हैं कि सिस्टम को काम कैसे करना चाहिए, जैसे उपलब्धता, विश्वसनीयता, प्रदर्शन, स्केलेबिलिटी, सुरक्षा, डिप्लॉयबिलिटी, टेस्टेबिलिटी और मेंटेनबिलिटी। अक्सर व्यावसायिक मांगे इन्हें सीधे नाम से नहीं बताती। कोई उत्पाद तेजी से नए फीचर जारी करने की मांग कर सकता है, जिसका अर्थ अधिक डिप्लॉयबिलिटी और मॉड्यूलरिटी हो सकता है। भारी मौसमी ट्रैफिक की जरूरत स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी की ओर संकेत करती है। आर्किटेक्ट का काम इन अस्पष्ट अपेक्षाओं को पहचानना, प्राथमिकता देना और जहां संभव हो वहां मापने योग्य बनाना है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि गुण परस्पर टकरा सकते हैं। मजबूत सुरक्षा प्रक्रियाएं उपयोग में सहजता या विकास गति को प्रभावित कर सकती है, जबकि अत्यधिक प्रदर्शन अनुकूलन कोड की सरलता घटा सकता है। इसलिए सभी गुणों को अधिकतम करने का लक्ष्य व्यावहारिक नहीं है। बेहतर तरीका है कि महत्वपूर्ण गुणों की स्पष्ट सूची बने, उनके स्वीकार्य स्तर पर सहमति हो और डिजाइन को उन्हीं कसौटियों पर परखा जाए। इस तरह आर्किटेक्चर की चर्चा राय आधारित बहस से निकलकर प्रमाण, जोखिम और प्राथमिकताओं पर आधारित संवाद बनती है। तीसरा, कंपोनेंट सीमाएं, कपलिंग और कोहिजन से मॉड्यूलर सिस्टम बनाना कंपोनेंट आधारित सोच पुस्तक का व्यावहारिक केंद्र है। लेखक कंपोनेंट को केवल कोड के पैकेज या तकनीकी फोल्डर के रूप में नहीं देखते, बल्कि जिम्मेदारियों, व्यवहार और निर्भरताओं की उपयोगी सीमा के रूप में देखते हैं। सही कंपोनेंट सीमा तय करने में डोमेन, डेटा, परिवर्तन की संभावनाएं और टीम की कार्यप्रणाली सभी प्रासंगिक है। एक उपयोगी कंपोनेंट में संबंधित जिम्मेदारियां साथ हो, जिसे कोहिजन कहा जाता है, और दूसरे कंपोनेंटों से अनावश्यक निर्भरता कम हो, जिसे कम कपलिंग कहा जाता है। यह विभाजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बदलाव कभी पूरी प्रणाली में समान रूप से नहीं आते। यदि बार बार बदलने वाली जिम्मेदारियां अलग सीमाओं में हैं, तो परिवर्तन का प्रभाव सीमित किया जा सकता है। पुस्तक ग्रैनुलैरिटी और पार्टिशनिंग के प्रश्न भी उठाती है। बहुत बड़ा कंपोनेंट स्वतंत्र बदलाव रोक सकता है, जबकि अत्यधिक छोटे कंपोनेंट समझने, परीक्षण करने और समन्वय में महंगे हो सकते हैं। इसलिए कंपोनेंट आकार का कोई स्थायी आदर्श नहीं दिया गया है। आर्किटेक्ट को निर्भरता की दिशा, संचार की लागत, डेटा की जरूरत और संभावित विकास के आधार पर सीमा चुननी होती है। यह भाग विशेष रूप से बताता है कि अच्छी मॉड्यूलरिटी केवल स्वच्छ कोड का गुण नहीं बल्कि डिप्लॉयमेंट, परीक्षण, टीम स्वायत्तता और दीर्घकालिक रखरखाव का आर्किटेक्चरल आधार है। चौथा, आर्किटेक्चर स्टाइल चुनने में संरचना के साथ संचालन लागत देखना। पुस्तक कई प्रमुख आर्किटेक्चर स्टाइल्स का परिचय और तुलनात्मक ढांचा देती है, जिनमें लेयर्ड, पाइपलाइन, माइक्रोकर्नेल, सर्विस आधारित, इवेंट ड्रिवन, स्पेस आधारित और माइक्रो सर्विसेज शामिल है। इसका लक्ष्य किसी सूची को याद कराना नहीं बल्कि हर शैली के संरचनात्मक परिणाम समझाना है। लेयर्ड शैली जिम्मेदारियों को परिचित स्तरों में व्यवस्थित कर सकती है, लेकिन कठोर परतें कभी कभी अनावश्यक निर्भरता और प्रदर्शन लागत पैदा करती हैं। इवेंट ड्रिवन शैली ढीला जुड़ाव और प्रतिक्रियाशील प्रवाह दे सकती है, पर इवेंट क्रम, त्रुटि प्रबंधन और डेटा संगति अधिक कठिन हो जाते हैं। माइक्रोकर्नेल उत्पादों में स्थिर मूल क्षमता और बदलने योग्य विस्तारों के लिए उपयोगी हो सकता है। माइक्रो सर्विसेज के मामले में पुस्तक विशेष रूप से चेतावनी देती है कि सेवा विभाजन के लाभ के साथ वितरित सिस्टम की वास्तविक लागत भी आती है। स्टाइल चुनते समय केवल कोड संरचना नहीं देखनी चाहिए, संचालन, निगरानी, डिप्लॉयमेंट, डेटा प्रबंधन, टीम कौशल और विफलता की स्थितियों का भी मूल्यांकन जरूरी है। यह संतुलित तुलना उस आम प्रवृत्ति के विरुद्ध है जिसमें संगठन आधुनिक दिखने के लिए जटिल शैली अपना लेते हैं। पुस्तक का उपयोगी योगदान यह है कि यह चयन को कैरेक्टरिस्टिक्स और संदर्भ से जोड़ती है, न कि किसी सार्वभौमिक तकनीकी पदानुक्रम से। अंत में, आर्किटेक्ट की भूमिका में संवाद, शासन और निरंतर परिवर्तन। पुस्तक आर्किटेक्चर को केवल डायग्राम या प्रारंभिक डिजाइन दस्तावेज नहीं मानती। आर्किटेक्ट को निरंतर विश्लेषण करने वाला परिवर्तन प्रबंधक बताया गया है, जिसे तकनीकी निर्णयों के साथ लोगों और प्रक्रियाओं को भी संभालना पड़ता है। इसमें निर्णयों को समझाना, अलग राय रखने वालों से संवाद करना, जोखिमों पर चर्चा कराना और टीमों को साझा दिशा देना शामिल है। लेखकों के अनुसार अच्छी आर्किटेक्चरल गवर्नेंस का अर्थ हर छोटे निर्णय पर नियंत्रण करना नहीं है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण निर्णयों और सिद्धांतों का पालन हो तथा अपवाद स्पष्ट रूप से स्वीकृत और दर्ज हो। जहां संभव हो, अनुपालन को स्वचालित जांचों के जरिए मजबूत करना उपयोगी है। पुस्तक छोटे निर्णय समूहों और असहमति के लिए सुरक्षित वातावरण के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि बड़े समूहों में लोग वरिष्ठ या बहुसंख्यक राय को चुनौती देने से बच सकते हैं। आर्किटेक्ट को व्यवसाय डोमेन, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, ऑपरेशंस और संगठनात्मक राजनीति के बीच संबंध समझना चाहिए। यह भूमिका का व्यापक चित्र है। तकनीकी दक्षता आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। यदि कोई निर्णय टीम को समझ में नहीं आता, लागू नहीं हो सकता या व्यावसायिक प्राथमिकताओं से कटा है, तो उसका तकनीकी रूप से आकर्षक होना भी सीमित मूल्य रखता है। निष्कर्ष में, फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर उन डेवलपर्स के लिए सबसे उपयोगी है जो वरिष्ठ इंजीनियरिंग से आर्किटेक्चरल जिम्मेदारियों की ओर बढ़ रहे हैं, नए आर्किटेक्ट है या तकनीकी नेतृत्व में निर्णयों का बेहतर आधार चाहते हैं। अनुभवी आर्किटेक्ट को इसमें हर विषय पर नया या अत्यधिक गहरा समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें अपनी निर्णय प्रक्रिया, शब्दावली और टीम संवाद को व्यवस्थित करने का उपयोगी ढांचा मिल सकता है। पुस्तक उन पाठकों के लिए कम उपयुक्त है जो किसी एक प्लेटफॉर्म की विस्तृत इंप्लीमेंटेशन गाइड, गहन कोड उदाहरण या माइक्रो सर्विसेज का तैयार नुस्खा खोज रहे हैं। इसकी वास्तविक ताकत व्यापकता और संतुलन में है। कई आर्किटेक्चर पुस्तकें किसी विशेष शैली जैसे क्लीन आर्किटेक्चर या माइक्रो सर्विसेज को केंद्र में रखती है। यह पुस्तक पहले वह सोच सिखाती है जिससे पाठक किसी भी शैली का मूल्यांकन कर सके। तकनीकी संरचना, गुणवत्ता गुण, कंपोनेंट सीमाएं, संचालन संबंधी परिणाम और मानवीय कौशल को एक ही चर्चा में जोड़ना इसे अलग बनाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि पुस्तक निश्चित नियमों के बजाय संदर्भ आधारित विश्लेषण पर जोर देती है। पाठक व्यावहारिक रूप से बेहतर प्रश्न पूछना सीखता है, जैसे किस गुणवत्ता गुण की प्राथमिकता है, बदलाव किस दिशा में संभव है, कौन सी जटिलता टीम संभाल सकती है और निर्णय के नुकसान क्या होंगे। इसी कारण यह केवल आर्किटेक्चर पैटर्न की सूची नहीं बल्कि इंजीनियरिंग विवेक विकसित करने वाली आधारभूत पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्क रिचर्ड्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।